एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं।
कौन सा सवाल?
यही कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है। ये वो सवाल है जो कभी कभी आधी रात को जगा देता है ना।
बिल्कुल, और ये सवाल जितना पुराना है उतना ही आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ, इसीलिए आज हम ब्रिटिश विचारक टेरी ईगलटन की किताब द मीनिंग ऑफ लाइफ के विचारों की गहराई में उतरेंगे।
और मजे की बात यह है कि ये किताब कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि इस सवाल के बारे में सही ढंग से सोचना कैसे शुरू करें।
और ये आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक अजीब दौड़ में जी रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक मान्यताएं कमजोर पड़ रही हैं
और दूसरी तरफ बाजारवाद हमें एक अंतहीन दौड़ में उलझाए रखता है।
सही कहा। और इन दोनों के बीच में हम अक्सर खुद को अकेला और उद्देश्यहीन पाते हैं। मुझे लगता है ये किताब इसी उलझन से निकलने का एक रास्ता दिखाती है।
तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन किसी विचार को समझने से पहले उसके विचारक को जानना बड़ा दिलचस्प होता है, और टेरी ईगलटन वो कोई आम दार्शनिक नहीं है।
हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो एक साहित्यिक आलोचक है, एक मार्क्सवादी विचारक है। कोई उनसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो जीवन के अर्थ जैसे विषय पर किताब लिखेंगे।
यही तो उनकी खासियत है।
तो उनका नजरिया किसी फिलोसोफर या आध्यात्मिक गुरु से अलग कैसे है?
देखिए, वो इस सवाल का जवाब किसी आसमान में या किसी पवित्र किताब में नहीं खोजते।
अच्छा।
वो इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, समाज में, राजनीति में खोजते हैं। वो साहित्य, दर्शन, मार्क्सवाद, यहाँ तक कि धर्मशास्त्र, सबको एक साथ मिला देते हैं।
वाह, ये तो बहुत ही अनोखा मिश्रण है।
बिल्कुल, और इसी वजह से उनकी दृष्टि बहुत ताजा और जमीन से जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी बात, वो गंभीर विचारों को भी बड़े सरल और कभी कभी मजाकिया अंदाज में पेश करते हैं।
यानी ये कोई भारी भरकम अकादमिक किताब नहीं है। तो किताब का मतलब मूल विचार क्या है?
किताब का जो केंद्रीय विचार है वो एक झटके में हमारी सोच को बदल सकता है। ईगलटन कहते हैं कि हम अक्सर दो बड़ी गलतियां करते हैं।
क्या है वो?
पहली, हम ये मानते हैं कि जीवन का कोई एक रहस्यमय अर्थ है जो कहीं ऊपर लिखा हुआ है और हमें उसे खोजना है।
और दूसरी?
दूसरी ये कि जब वो हमें नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि जीवन पूरी तरह से निरर्थक है, बेतुका है। ईगलटन कहते हैं ये दोनों ही रास्ते गलत हैं।
तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर अर्थ ऊपर से नहीं आता और अंदर भी कुछ नहीं है तो वो है कहाँ?
वो कहते हैं कि अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजा जाता है।
तो फिर?
बल्कि ये वो चीज है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस।
एक प्रैक्टिस।
हाँ, और इस प्रैक्टिस की नींव है प्रेम। लेकिन रुकिए, ये कोई रोमांटिक बॉलीवुड वाला प्रेम नहीं है।
अच्छा,
तो ये किस तरह का प्रेम है?
ये एक दूसरे को फलने फूलने में मदद करने की एक व्यवहारिक प्रतिबद्धता है। मतलब एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करना।
अच्छा, तो उन्होंने सवाल ही बदल दिया, जीवन का अर्थ क्या है से बदलकर एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए।
बिल्कुल,
ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि फोकस किसी एक जवाब को खोजने पर नहीं बल्कि जीने के तरीके पर है।
और ये खोज व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है।
एकदम सही। और इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए ईगलटन हमें एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक यात्रा पर ले जाते हैं।
हाँ, और वो शुरुआत जवाब देने से नहीं करते बल्कि सवाल पर ही सवाल उठाने से करते हैं। वो पूछते हैं हमें ये सवाल पूछते ही क्यों हैं।
सही पकड़ा। वो कहते हैं कि ये सवाल पूछना ही एक बीमारी का लक्षण है।
बीमारी का लक्षण? ये तो बड़ी अजीब बात है।
वो कहते हैं पुराने समाजों को देखिए, जहां परंपरा और समुदाय जीवन का अटूट हिस्सा थे, वहां किसी को सुबह उठकर ये नहीं पूछना पड़ता था कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है,
क्योंकि अर्थ उनके जीवन में ही गुथा हुआ था।
हाँ, उनके काम में, उनके परिवार में, उनके रीति रिवाजों में, उसे अलग से खोजने की जरूरत ही नहीं थी।
तो मतलब ये सवाल पूछना ही इस बात का संकेत है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कट गए हैं और अब अकेले खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ।
ठीक है, ये एक आधुनिक समस्या है। इसके बाद ईगलटन इतिहास के कुछ सबसे मशहूर जवाबों की चीरफाड़ करते हैं।
जैसे कि सबसे पुराना जवाब, धार्मिक जवाब, ये मानना कि हमारे जीवन का अर्थ ईश्वर की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है।
हाँ, ईगलटन इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वो मानते हैं कि इससे हमें सांत्वना मिल सकती है, एक उद्देश्य मिल सकता है।
लेकिन
इसकी एक कीमत है। ये हमारी आजादी को कम कर सकता है और हमें एक बड़ी कहानी की कठपुतलियों जैसा महसूस करा सकता है।
और फिर आता है विज्ञान का नजरिया।
हाँ, विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि दुनिया कैसे काम करती है, तारे कैसे जलते हैं, डीएनए कैसे बनता है,
पर ये नहीं बता सकता कि हमें कैसे जीना चाहिए।
सही कहा, अर्थ तथ्यों का नहीं मूल्यों का सवाल है, और विज्ञान मूल्यों के बारे में खामोश रहता है।
और फिर आता है आज के दौर का सबसे लोकप्रिय जवाब, जो हर सेल्फ हेल्प किताब में मिलता है, अपना अर्थ खुद बनाओ
या अपने पैशन को फॉलो करो।
हाँ, और ईगल्टन इसकी बहुत तीखी आलोचना करते हैं।
बिल्कुल।
एक मिनट, लेकिन ये तो वो सपना है जो हम सबको बेचा जाता है कि अगर आप वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं तो आपको जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। ईगल्टन कह रहे हैं ये गलत है।
वो ये नहीं कह रहे कि पैशन बुरी चीज है, वो कह रहे हैं कि जब ये सिर्फ मेरे पैशन और सिर्फ मेरे अर्थ तक सिमट जाता है तो ये आत्ममोह यानी नार्सिसिज्म को जन्म देता है,
और गहरे अकेलेपन को भी।
हाँ, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना, हमारा अर्थ हमेशा दूसरों से जुड़ा होता है। अकेले में बनाया गया अर्थ बहुत खोखला हो सकता है।
और आखिर में वो कामू और सार्थर जैसे अस्तित्ववादी विचारकों को देखते हैं।
ईगल्टन इन विचारकों का सम्मान करते हैं क्योंकि वो जीवन की मुश्किलों का ईमानदारी से सामना करते हैं, लेकिन उन्हें यह समाधान बहुत ज्यादा व्यक्तिगत लगता है।
मतलब कामू का हीरो सिसिफस, जो अकेले ही पत्थर को पहाड़ पर धकेलता है।
हाँ, उसका विद्रोह महान है, लेकिन वो एक अकेला विद्रोह है, उसमें एक बेहतर साझा भविष्य की कोई सकारात्मक कल्पना नहीं है।
ठीक है, तो उन्होंने उन सभी जगहों को खारिज कर दिया है जहाँ हम आमतौर पर अर्थ की तलाश करते हैं, भगवान, विज्ञान, यहाँ तक कि खुद अपने अंदर भी। तो इसके बाद वो क्या रास्ता सुझाते हैं?
यहीं पर किताब का असली सार है। पुराने जवाबों का मलबा साफ करने के बाद वो अपना सकारात्मक प्रस्ताव रखते हैं।
और वो क्या है?
वो कहते हैं, सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। जीवन का कोई एक अर्थ खोजने के बजाय एक सार्थक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करो।
मतलब अर्थ कोई खजाना नहीं है जिसे खोजना है।
नहीं, बल्कि ये संगीत या कला जैसा एक गुण है जिसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से विकसित करना पड़ता है।
वाओ, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। और अगर ये एक अभ्यास है तो हम अभ्यास किस चीज का कर रहे हैं?
हम प्रेम का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा, ये कोई भावना नहीं है। ईगल्टन इसके लिए एक पुराना यूनानी शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगापे।
अगापे, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है दूसरों की भलाई के लिए एक व्यवहारिक बिना शर्त वाली प्रतिबद्धता। मतलब आप अपनी खुशी दूसरों को फलने फूलने में मदद करने में खोजते हैं।
और इफ अभ्यास का लक्ष्य क्या है?
यहाँ वो अरस्तु से एक विचार उधार लेते हैं, यूडीमोनिया।
यूडीमोनिया,
हाँ, जिसका मोटा मोटा मतलब है मानवीय उत्कर्ष, अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास।
तो एक सार्थक जीवन वो है जिसमें हम अपनी सबसे अच्छी मानवीय क्षमताओं जैसे तर्क, रचनात्मकता, करुणा को पूरी तरह से विकसित करते हैं।
और ये हम अकेले नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए करते हैं।
इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? ये अभी भी थोड़ा अमूर्त है।
और इसी को समझाने के लिए ईगल्टन एक जैज बैंड का शानदार उदाहरण देते हैं। ये इस किताब का शायद सबसे यादगार हिस्सा है।
हाँ, ये उदाहरण वाकई कमाल का है। जरा सोचे, एक जैज बैंड, उसमें हर संगीतकार अपनी पूरी रचनात्मकता और कला का प्रदर्शन कर रहा है। वो अपनी धुन बजाने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए आजाद है।
लेकिन ये आजादी मनमानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गिटार वाला कुछ और बजा रहा है और ड्रमर कुछ और।
नहीं, वो सब एक साझा लय और ताल के भीतर काम कर रहे हैं।
और सबसे जरूरी बात,
वो लगातार एक दूसरे को सुन रहे हैं। सैक्सोफोन वाला पियानो वाले की धुन पर प्रतिक्रिया दे रहा है और ड्रमर उन दोनों को सुनकर एक नई लय बना रहा है।
बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसा सामूहिक संगीत जो किसी एक अकेले संगीतकार की कला से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है।
यहाँ व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामूहिक सामंजस्य दो अलग अलग चीजें नहीं हैं,
बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर व्यक्ति की आजादी समूह को बेहतर बनाती है और समूह का ढांचा हर व्यक्ति को चमकने का मौका देता है।
वाह, ये रूपक तो दिमाग में बैठ गया है। ये मैं और हम के बीच के तनाव को कितनी खूबसूरती से हल करता है। ईगल्टन कहते हैं कि यही एक सार्थक जीवन का मॉडल है।
ठीक, यही एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की आजादी हो, लेकिन ये आजादी दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और सहयोग से जुड़ी हो।
इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि अर्थ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संबंध परक है।
एकदम सही। उनके लिए अर्थ आपके अंदर नहीं मिलता, या आपके और दूसरे लोगों के बीच की जगह में पैदा होता है।
और ये बात भारतीय संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है, जहां हमेशा से परिवार और समुदाय को महत्व दिया गया है।
बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी अकेलेपन में नहीं बल्कि गहरे रिश्तों में मिलती है।
और दूसरा विषय कि अर्थ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक अभ्यास है।
तो ये एक तरह से आत्मा के लिए जिम जाने जैसा है।
हाँ हाँ, क्या खूब कहा। बिल्कुल, ये किसी एक किताब को पढ़कर नहीं मिलता, ये हमारे रोजमर्रा के कामों में बनता है। ये एक तरह से कर्म योग का आधुनिक सेक्युलर संस्करण है।
लेकिन यहाँ एक और विषय है जिसने मुझे चौंका दिया। ईगल्टन कहते हैं कि अर्थ की खोज एक राजनीतिक परियोजना भी है। राजनीति इसमें कहां से आ गई?
ये उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। उनका तर्क है कि पूंजीवाद जैसी व्यवस्थाएं जो हमें लगातार एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए उकसाती हैं
और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं,
हाँ,
वो सार्थक जीवन जीना मुश्किल बना देती हैं। जब हर रिश्ता एक लेन देन बन जाए तो अगापे यानी निस्वार्थ प्रेम के लिए जगह कहाँ बचेगी?
मतलब एक ऐसा समाज जहाँ बहुत ज्यादा होड़ हो, वहाँ लोगों के लिए जैज बैंड की तरह सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है।
हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाना भी अर्थ की खोज का ही एक हिस्सा है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। एक मुझे याद है, जीवन का अर्थ किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि खास तरीके से जीने की कला है।
ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि दिमागी बहसों में उलझने के बजाय अपने जीने के तरीके पर ध्यान दो। अर्थ दिमाग में नहीं जिंदगी में मिलता है।
एक और विचार था जिसने मुझे झकझोर दिया। एक सार्थक जीवन का उल्टा एक बेतुका जीवन नहीं बल्कि एक तुच्छ जीवन है।
ये मेरा पसंदीदा है। असली खतरा ये नहीं है कि ब्रह्मांड का कोई मतलब नहीं है, असली खतरा ये है कि हमारी अपनी जिंदगी छोटी छोटी महत्वहीन चीजों में बर्बाद हो जाए,
सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनने में
या ऐसी चीजें खरीदने में जिनकी हमें जरूरत भी नहीं।
तो इन सब विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ व्यवहारिक बातें।
सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है खोजने के बजाय बनाने पर ध्यान देना। किसी एक बड़े महान उद्देश्य की तलाश में परेशान होने के बजाय अपने मौजूदा रिश्तों में निवेश करें।
अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को गहरा करें।
हाँ, और अपने हर काम से पूछें, क्या ये मेरे और दूसरों के फलने फूलने में मदद कर रहा है?
और काम के बारे में क्या?
बहुत से लोगों को अपनी नौकरी अर्थहीन लगती है।
अगर ऐसा है तो नौकरी के बाहर अर्थ खोजें, रचनात्मक और सेवा के कामों में शामिल हों।
जैसे स्वयं सेवा करना, कोई कला सीखना या बस किसी जरूरतमंद की मदद करना।
बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें जीवन में अर्थ का भाव भर सकती हैं। और तीसरा, प्रेम को एक क्रिया के रूप में अपनाना।
ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रतिबद्धता है।
मतलब दूसरों को ध्यान से सुनना, उनके सपनों में उनकी मदद करना और जरूरत पड़ने पर उनके लिए खड़े होना, ये रोज का एक अभ्यास है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे लिए जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये है कि जीवन के किसी एक गुप्त जादुई अर्थ को खोजने के बोझ से आजादी मिल गई है, वो दबाव हट गया है।
हाँ, कि कोई एक सही जवाब है जो हमें मिल नहीं रहा।
बिल्कुल, अर्थ बनाया जाता है, खोजा नहीं जाता। और वो जैज बैंड वाला उदाहरण, वो तो अब हमेशा मेरे साथ रहेगा।
मेरे लिए प्रेम की वो व्यवहारिक परिभाषा बहुत शक्तिशाली थी, दूसरों को फलने फूलने में मदद करने की एक सक्रिय प्रतिबद्धता। यह हमें निष्क्रिय सोच से निकालकर कर्म की ओर ले जाता है।
हाँ, ये बताता है कि अर्थ हमारे अंदर कहीं छिपा नहीं है
बल्कि हमारे और दूसरों के बीच के रिश्ते में पैदा होता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर सार्थक जीवन एक जैज बैंड की तरह है तो आप कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और आप जीवन के इस ऑर्केस्ट्रा में दूसरे संगीतकारों को कितनी अच्छी तरह सुन रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।